लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सिस्टर मरिया रोसा लेगोल के जीवन की एक झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे हमेशा एक प्रकाश स्तंभ की जरूरत होगी, एक प्रकाश की, क्योंकि उस प्रकाश के द्वारा मैं लोगों तक पहुंच सकती हूं, उन्हें समझने के लिए, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, जिससे कि वे राहत पा सकें। मेरा जीवन इसके लिए है कि मैं दूसरों को कैसे राहत दूं, मैं किस तरह एहसास दिला सकती हूं थोड़ा भी कि ईश्वर उन्हें प्यार करते हैं। तेगुसिगाल्पा की सड़कों पर यात्रा करती हुई एक बुजुर्ग कार्तिक दंपहन सिस्टर मरिया रोसा लेगोल यात्री सीट पर बैठकर अपनी मूल स्पानी भाषा में एक भक्ति गीत गा रही हैं और एक क्रूस को ऐसे पकड़ी हुई हैं जैसे वह कोई सजीव प्राणी हो। इन दिनों विद दिस लाइट शीर्षक के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अमेरिकी सिनेमाघरों में दिखाया जा रहा है, जो सिस्टर मरिया रोसा लेगोल के जीवन और धरोहर पर केंद्रित है, जिन्हें कभी होंडुरस की मदर तेरेसा कहा जाता था, जिन्होंने होंडुरस के करीब 90,000 बच्चों को गरीबी और शोषण से बचने में मदद दी है। होंडुरस की मदर तेरेसा कही जाने वाली सिस्टर मरिया रोसा लेगोल की विरासत होंडुरस में अब भी जीवित है, जिन्होंने एक धम बहन के रूप में 70 साल व्यतीत करते हुए होंडुरस के करीब 90,000 बच्चों की मदद की है, उन्हें गरीबी और हिंसा से बचाया है तथा अपने काम का विस्तार करने के लिए समर्थकों के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को प्रेरित किया है। सिस्टर मरिया रोसा लेगोल का जन्म होंडुरस के पोर्टो कोर्टेस में 21 नवंबर 1926 को हुआ था। वे खुद एक अनाथ थीं और जर्मन धम बहनों के अनाथालय में पली बढ़ी। जब वे 6 साल की थीं, तभी पहली बार अपनी बुलाहट को महसूस किया और जब 21 साल की हुई तब सन 1948 में उन्होंने सेंट फ्रांसिस की धम बहनों के स्कूल के नोविशिएट में प्रवेश किया। सिस्टर मरिया रोसा लेगोल ने 13 जून 1949 को धम संघ में प्रथम व्रत धारण किया और धम संघ में एक नर्स के रूप में सेवा देने लगी। अनाथ और असहाय बच्चों के प्रति उन्हें विशेष सहानुभूति थी। उन्होंने अपने पहले दल के बच्चों को जेल से बचाया था। उन दिनों वहाँ बच्चों को माता पिता के साथ जेल में रखा जाता था, जिससे बच्चों को दुर्व्यवहार और शिक्षा की कमी का सामना करना पड़ता था। होंडुरस में एक ऐसा जेल है जहाँ सिर्फ महिलाएं रहती हैं। होंडुरस की राजधानी तेगुसिगाल्पा से 40 किलोमीटर दूर तमारा में स्थित महिला सुधार गृह में अभी 700 महिला कैदी हैं और यह देश में एकमात्र सुविधा है जहां शिशु अपनी मां के साथ रह सकते हैं। इस समय जेल कुल 49 बच्चों का घर है तथा 6 और बच्चे आने वाले हैं। तेगुसिगाल्पा में रहते हुए सिस्टर मरिया रोसा को अस्पताल में नाइट शिफ्ट मिला, जिसके कारण वे अनाथ और जेल में रहने वाले माता पिता के बच्चों को विशेष ध्यान देने लगी। होंडुरस में गरीब बच्चों की मदद करने के जुनून ने उन्हें कमजोर बच्चों के लिए घर खोलने हेतु प्रेरित किया। सिस्टर मरिया रोसा ने अपना पहला अनाथालय 1964 में खोला। उसके बाद 1966 में उन्होंने तेगुसिगाल्पा में गैर सरकारी संगठन बच्चों के लिए मित्र समाज की स्थापना की, जो बच्चों को शेल्टर और सुरक्षा प्रदान करता है। इसका विस्तार हुआ और बाद में यह बच्चों को आश्रय, कृषि प्रशिक्षण, शिक्षा और अस्पताल की सुविधा प्रदान करने लगा। 1968 में सिस्टर रोसा ने SOS किंडरफोर्ड ऑस्ट्रिया के साथ पूरे देश में काम करना शुरू किया और एक साल बाद नोवो पैराडिसो की स्थापना की। इस प्रकार पूरे देश में अनाथालय खोलने के लिए काम किया। समय बीतने के साथ लातिनी अमेरिका में उन्होंने करीब 500 अनाथालय खोले। एक समग्र दृष्टिकोण रखते हुए सिस्टर मरिया ने विभिन्न दूरदर्शी, उद्यमशील और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के रिश्तेदारों एवं समुदायों के लिए नौकरियां पैदा की। साथ ही क्लिनिक और मेडिकल के साथ स्वास्थ्य सेवा से उन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता दी। गृह युद्ध, आर्थिक पतन और प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी उन्होंने अनेक युवाओं की गरीबी और हिंसा के पारिवारिक चक्र को तोड़कर अपना जीवन बनाने में मदद करने का काम जारी रखा। सिस्टर मरिया रोसा लेगोल एक फ्रांसिस्कन धर्मबहन थी जिन्होंने होंडुरस के अनाथ और परित्यक्त बच्चों को शरण देने के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। अक्टूबर 2020 में COVID-19 से संक्रमित होने के बाद 93 वर्ष की आयु में सिस्टर मरिया रोसा का निधन हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सिस्टर रोसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तानाशाही, सैन्य तख्तापलट, नरसंहार और प्राकृतिक आपदाओं को झेला, लेकिन अंत तक अपने विश्वास में अटल बनी रही। सिस्टर मरिया रोसा लेगोल की संत घोषणा प्रक्रिया धर्म प्रांत स्तर पर शुरू की जा चुकी है और अब इसे धन्य घोषणा की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत होंडुरस की मदर तेरेसा कही जाने वाली सिस्टर मरिया रोसा लेगोल की जीवनी पर एक चर्चा सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
मेरा जीवन मेरे लिए है, तेरा उपहार प्रभु।
मेरा जीवन मेरे लिए है, तेरा उपहार प्रभु।
ओ न जाने कितने करेगा,
ओ न जाने कितने करेगा,
मुझ पर तू उपकार प्रभु। मेरा जीवन मेरे लिए है, तेरा उपहार प्रभु। मेरा जीवन मेरे लिए है, तेरा उपहार प्रभु।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका माँ की सीख। लेखिका है समता बोरेकर। श्रोताओ, विवाह एक ऐसा बंधन है जो रिश्तों को एक नए पायदान पर ले जाता है। इस बंधन में बंध कर औरत एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। बेटी से बहू तक का सफर कहने को तो एक दिन का होता है, परंतु उस एक दिन के बाद यह जीवन भर के लिए जुड़ जाता है। शादी के बाद वह मायका मेहमान की तरह आती जाती है या मायके आना जाना किसी खास अवसर पर ही होता है। एक ही शहर में बेटी का ससुराल और मायका दोनों हो या बेटी बार बार मायके की दहलीज पर कदम रखती है और बेटी अपने मायके में अपना आधिपत्य जताती है, तब वहाँ भी ननद भाभी के विवादों के अंकुर फूटने लगते हैं। मायके में बेटी की दखलअंदाजी धीरे धीरे रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप का फर्ज बनता है कि वे बेटी का पक्ष लेने के बजाय उसे समझाएं कि मायके में उसकी दखलअंदाजी ठीक नहीं। शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं समता बोरेकर की लिखी नाटिका माँ की सीख।
अरे बहुत भूख लगी है कविता, जल्दी से कुछ दे दो।
अरे घर में घुसते ही फूक फूक के रट शुरू। चाय बनाने रखी है और ये लीजिए आपके ब्रेड सैंडविच।
ब्रेड सैंडविच, भाई वाह वाह वाह, अरे बीवी हो तो ऐसी हो। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, मुझे ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए भोपाल जाना है।
4 दिन?
अब क्या करूं कविता, भाई ऊपर से ऑर्डर आया है, जाना तो पड़ेगा।
आपका क्या है, ये कहा और ये चले। आपके बगैर मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
अरे 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 क्यों?
अब देखो मिनी थी तो उसके साथ दिन कट जाता था, लेकिन ये गर्मी की छुट्टियाँ आते ही वो चल देती है अपने मामा के घर, और अब आप चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूँगी।
अकेली? अरे भाई अकेली कहाँ हो, मम्मी है ना। अच्छा अच्छा एक काम करो, तुम भी अपने मायके हो, बस हो जाएगा काम।
अरे हाँ ये ठीक रहेगा, मैं ना अभी माँ को फोन करती हूँ।
मैडम फोन बाद में लगाना, पहले मेरी पैकिंग कर दो, सुबह सुबह जल्दी निकलना होगा मुझे।
अरे हाँ हाँ अच्छा ठीक है।
हेलो कवि, कवि बेटा सब ठीक तो है ना?
हाँ माँ सब मजे में है।
अरे तो रात के 11 बजे फोन क्यों किया बेटा तूने? मैं तो घबरा ही गई, वक्त का तो ध्यान रखा कर।
ओ 11 बज गया। अरे माँ घर के काम निपटाते निपटाते समय का ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा सुनो ना, मैंने इसलिए फोन किया था कि ना मैं कल घर आ रही हूँ।
ओफो तो इसमें क्या नई बात है, एक ही मोहल्ले के इस कोने पर तो तेरा ससुराल और दूसरे कोने पर तेरा मायका, तकरीबन हर दिन तेरा चक्कर लग ही जाता है। इस बात के लिए आधी रात को फोन किया तूने?
ओहो माँ पूरी बात तो सुनो ना, मैं ना पूरे 4 दिनों के लिए आ रही हूँ। वो क्या है ना, सुमित 4 दिन के लिए भोपाल जा रहे हैं, तो मैं वहाँ जाती हूँ।
अच्छा अच्छा ठीक है, अब फोन रख, बाय
बाय माँ।
बता दिया अपनी माँ को?
हाँ बता दिया।
अरे भाई इतनी रात को फोन करने की क्या जरूरत थी, वो तो 10 बजे तक सो जाती है ना।
अरे आपकी पैकिंग के चक्कर में ना मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा।
तुम भी कविता ना बस बहुत मैं कहता हूँ कमाल हो। अरे भाई लगभग हर दूसरे दिन तुम वहाँ जाती हो, मगर फिर मायके के नाम से बच्चों की तरह बस लालायित रहती हो, मायका मायका मायका।
हाँ हाँ तो क्यों ना रहूं। अरे मेरी माँ का घर मतलब आराम ही आराम। अजी एक ग्लास पानी भी मैं अपने हाथ से नहीं उठाती हूँ। हाँ
बहुत तारीफ की बात है कि तुम वहाँ एक गिलास पानी अपने हाथ से भी नहीं पीती। वेरी गुड।
इतनी रात गए, किसका फोन था माँ?
अरे कविता का था और किसका।
इतनी रात को, सब ठीक तो है ना, कोई इमरजेंसी तो नहीं, मैं जाऊं क्या?
अरे नहीं, वहां नहीं। पे? अरे नहीं नहीं पगली है, ये बताने को फोन किया उसने कि कल वो यहाँ आ रही है।
अच्छा।
एक बेटी की माँ बन गई है मगर हरकतें आज भी बच्चों जैसी ही है, जब देखो तब दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आती है। उधर दामाद ऑफिस गए नहीं कि इधर कविता हाजिर, अब उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कमल।
कोई बात नहीं माँ, समय के साथ साथ समझने लगेगी।
अरे जो अब तक ना समझी आगे क्या खाक समझेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा कमल। तेरी पत्नी विभा कुछ कहती नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं समझ नहीं रही हूँ, विभा को परेशान कर देती है कविता।
अब कोई बात नहीं माँ, उसकी इकलौती ननद है, थोड़े नाज नखरे उठाने दो माँ।
नहीं कमल ये गलत बात है, घर आते ही विभा को दौड़ा दौड़ा कर थका देती है कविता, विभा के अपने काम छूट जाते हैं। वो तो किस्मत कि मेरी विभा अच्छी है, कुछ कहती नहीं है। सुन कमल, एक काम कर, विभा को बोल अपने कपड़े पैक करे और 4-6 दिनों के लिए अपने मायके चली जाए।
है माँ, अभी पिछले महीने तो होकर आई है वो। माँ, कविता के चक्कर में मुझे क्यों सजा मिल रही है माँ?
देख कमल, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, बस मैं कुछ नहीं जानती।
ठीक है माँ।
माँ, माँ मैं आ गई।
आ गई कवि, आजा 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 बेटा आजा।
हाँ, अरे माँ मैं तो सुबह से ही आ जाती मगर इनके लिए रास्ते का टिफिन ये वो वगैरह बनाने बनाने में ना मैं लेट हो गई।
हमारी समधन कैसी है, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना बेटा?
ओहो, उन्हें क्या होना है माँ, सब बढ़िया है। भाभी, ओ भाभी, भाभी जरा पानी पिला दो और चाय चढ़ा देना भाभी, और हाँ साथ में पकौड़े भी खाऊंगी। माँ जल्दी जल्दी में नाश्ता तो करना रह ही गया।
अरे कवि, पर विभा तो नहीं है बेटा?
हाँ
हाँ, मैं भी इसलिए तेरी ही राह देख रही थी, तू आए तो चाय पिए, और जा जल्दी जा किचन में और हम दोनों के लिए चाय बना ला बेटा।
ठीक है, मैं ही चाय बना लेती हूँ, इतनी सुबह सुबह जाने कहाँ चली गई भाभी।
अरे कवि बेटा, कवि पकौड़े भी बना ले जो तेरे को खाना है, सुन किचन में सब रखा है बेटा।
क्या, मुझे ही सब बनाना पड़ेगा, ओफो क्या मुसीबत है। माँ तुमने भी ना भाभी को बहुत ढील दे रखी है, अरे थोड़ी लगाम कसो।
हाँ अब उसे क्या बोलूँ बेटा, दुनिया ही ऐसी है, बहुएं सासों के बारे में सोचने लगे तो उल्टी गंगा ना बहने लगे।
क्यों भैया कुछ नहीं कहते क्या?
अरे वो क्या बोलेगा, शादी के बाद बेटों के मुंह जुबान कट जाती है।
अरे वाह, ऐसे कैसे जुबान कट जाती है? माँ परेशान हो और बेटे को कोई परवाह नहीं। मैं 4 दिनों के लिए आई हूँ माँ, भाई की अच्छी खबर लूंगी।
अरे नहीं नहीं बेटा, उसे कुछ ना कहना, बात और ना बिगड़ जाए, तेरा क्या 4 दिन में चली जाएगी, मुझे तो यहीं रहना है ना बेटा दोनों के पास।
ये लो चाय और बिस्किट।
बिस्किट, अरे पकौड़े कहाँ हैं?
अरे माँ पकौड़ों को मारो गोली, 4 दिन कोई आखिरी थोड़ी है, मैं फिर आ जाऊंगी, बार बार आऊंगी, तुम्हें कष्ट ना होने दूंगी। हाँ
यही तो मेरे जी का कष्ट है।
हाँ इसका क्या मतलब?
अरे तेरी भाभी बात बात पे तेरा ही उदाहरण देती है, कहती है तेरी सास कितनी अच्छी है, ना कोई रोक ना कोई टोक, चाहे दिन हो या रात हो, जब तू चाहे यहाँ टपक पड़ती है।
अच्छा
हाँ, तो अब तू अपना ही देख ले, तेरी सास की तबीयत तो जब तक खराब होती रहती है बेटा, फिर तू उन्हें अकेला छोड़ जब तक यहाँ चली आती है। अरे सुमित ने कभी तुम्हें टोका नहीं?
अच्छा माँ, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं।
यही तो बेटी, तुम्ही से तो वो दोनों सीख रहे हैं। अरे अब जिसे खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, वो दूसरों को क्या शिक्षा दे पाएगी, समझ रही है ना मेरी बात?
माँ मैं आपकी बात समझ गई, मैं माँ की ये सीख हमेशा ध्यान रखूंगी।
मेरी समझदार बेटी।
माँ की सीख, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संतोष जोशी, समता बोरेकर, दुर्गेश नंदनी और सुधीर तेलंग। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।